Oye, Mardán, जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, शिल प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं मुदिरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिनी, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी, नमो महाउदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वांछाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आज का भागवत वर्ग में सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ और ब्रज के यहाँ के सभी भक्तों का चरणों में मैं नमन करके आपका कृपा का भिक्षा मांगूंगा। आज का श्लोक क्रमांक है 31। कृपया दोहराइए। याइदं सुमहत् पुण्यं, याइदं सुमहत् पुण्यं श्रद्धया वहीतः पटेत्, श्रद्धया वहीतः पटेत्। याइदं सुमहत् पुण्यं, याइदं सुमहत् पुण्यं श्रद्धया वहीतः पटेत्। श्रावयेत् शृणुयाद्वापि, श्रावयेत् शृणुयाद्वापि सपृतोः पदवीमियात्, सपृतोः पदवीमिया, सपृतोः पदवीमियात्। ಯಾಯಿದಂ ಸುಮಹಾತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಯಾಯಿದಂ ಸುಮಹಾತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾವಹೀತಃ ಪಟೇ ಶ್ರಾವಯೇ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಶ್ರಾವಯೇ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಪೃಥೋಪದವೀಮಿಯ ಯಇದಂ ಸುಮಹತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಹೀತಃ ಪಟೇ ಶ್ರಾವಯೇ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಪೃಥೋ ಪದವೀಮಿಯ ಯಇದಂ ಸುಮಹತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಹೀತಃ ಪಟೇ ಶ್ರಾವಯೇ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಪೃಥೋ ಪದವೀಮಿಯ ಯಇದಂ ಸುಮಹತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಹೀತಃ ಪಟೇ ಶ್ರಾವಯೇ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಪೃಥೋ ಪದವೀಮಿಯ ಯಇದಂ ಸುಮಹತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಹೀತಃ ಪಟೇ ಶ್ರಾವಯೇ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಪೃಥೋ ಪದವೀಮಿಯ ಮಾತಾಜಿ ಯಇದಂ ಸುಮಹತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಹೀತಃ ಪಟೇ ಶ್ರಾವಯೇ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಪೃಥೋ ಪದವೀಮಿಯ ಯಇದಂ ಸುಮಹತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಹೀತಃ ಪಠೇ ಶ್ರಾವಯೇ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಪೃಥೋ ಪದವೀಮಿಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಐಸಾ ಹೈ ಯಹ ಜೋ ಇದಂ ಇಸ್ ಸುಮಹತ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾನ್ ಪುಣ್ಯಂ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮೇತ ಅವಹಿತ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕ ಪಠೇತ್ ಪಡ್ತಾ ಹೇ ಶ್ರಾವಯೇತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಶೃಣುಯಾತ್ ಸುನುತಾ ಹೇ ವಾ ಅಥವಾ ಅಪಿ ನಿಶ್ಚಯ ಹಿ ಸಹ ವಹ ವಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೃಥೋ ರಾಜ ಪೃಥುಕೆ ಪದವೀಂ ಪದ ಕೋ ಇಯಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಅನುವಾದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ದ್ವಾರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಥಾ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕ ರಾಜ ಪೃಥುಕೆ ಮಹಾನ್ ಗುಣೋಂಕೋ ಪಡ್ತಾ ಹೇ ಯ ಸ್ವಯಂ ಸುನ್ತಾ ಹೇ ಅಥವಾ ಅನ್ಯೋಂಕೋ ಸುನಾತಾ ಹೇ ವ ಅವಶ್ಯ ಹಿ ಮಹಾರಾಜ ಪೃಥುಕೆ ಲೋಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೇ ದೂಸರೆ ಶಬ್ದೋ ಮೇ ಐಸಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೀ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಅರ್ಥಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಧಾಮ ಕೋ ವಾಪಸ್ ಜಾತಾ ಹೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಹುತಿ ಸುಂದರ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ತೆ ಸಮಯ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರವಣಂ ಪರ್ ವಿಶೇಷ ಬಲ್ ದಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ಕಿ ವಿಷ್ಣು ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಶ್ರವಣ ತಥಾ ಕೀರ್ತನ ಸೇ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೋತಿ ಹೇ जब हम विष्णु का नाम लेते हैं तो उसका अर्थ विष्णु से संबंधित बातें भी होता है। शिव पुराण में शिवजी ने विष्णु पूजा को सर्वोच्च बताया है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है वैष्णव या विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। यहाँ यह तथ्य बताया गया है कि वैष्णव के संबंध में श्रवण तथा कीर्तन विष्णु के श्रवण कीर्तन के समान है, क्योंकि मैत्रेय ने बताया है जो कोई ध्यानपूर्वक पृथु महाराज के विषय में सुनता है उसे भी महाराज पृथु को मिलने वाला लोक प्राप्त होता है। विष्णु तथा वैष्णव में कोई द्वैत भाव नहीं है, इसे अद्वैय ज्ञान कहते हैं। एक वैष्णव विष्णु के ही समान महत्वपूर्ण है, इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु अष्टक ग्रंथ में लिखा है, साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्रै रुक्त तथा भाव्यतैव सब्धि किन्तु प्रभोर्यः प्रियैव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। गुरु का सम्मान परमेश्वर के ही समान किया जाता है, क्योंकि वह भगवान का परम विश्वसनीय सेवक होता है। इसे सभी शास्त्रों ने स्वीकार किया गया है और सभी विद्वानों ने इसका पालन किया है। अतः मैं श्री हरि के प्रामाणिक प्रतिनिधि अपने गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। परम वैष्णव गुरु होता है और भगवान से अभिन्न। कहा जाता है कि कभी कभी भगवान चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम का जप करते थे, जब उनके कुछ शिष्य उनसे इसके बजाय श्री कृष्ण का नाम लेने को कहते तो शिष्यों पर अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। इस घटना को लेकर इतना वितंडा हो गया कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में उन्हें गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम का जप करते थे, अतः गोपियों या भगवान के भक्तों की पूजा भगवान की भक्ति के ही समान है। भगवान ने स्वयं भी कहा है कि मेरे भक्तों की भक्ति करना मेरी प्रत्यक्ष भक्ति से श्रेष्ठ है। कभी कभी सहजी या भक्त अन्य भक्तों के कार्यकलापों को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की व्यक्तिगत लीलाओं में ही रुचि रखते हैं। ऐसा भक्त उच्च स्तरीय नहीं होता। जो भक्त तथा भगवान को समान स्तर पर देखता है वही आगे उन्नति करता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है और आप सभी ने बहुत सुंदर तरीके से इसको गाए हैं। इस श्लोक में प्रायः दो स्थिति के बारे में बताया है। भगवान का जो भक्ति है श्रवण से शुरुआत होता है। तो कभी कभी साधु लोग बोलते हैं, व्हेन यू हियर अबाउट योर डियर यू विल गो नियर। जब भगवान के बारे में सुनते हैं, जो भगवान सबका प्रेमी है, तो आप भगवान के करीब जाते हैं। व्हेन यू हियर अबाउट योर डियर यू विल गो नियर, ऐसा बताया जाता है। तो भगवान के बारे में सुनना बहुत ही पवित्र है। व्यक्ति को हृदयंतस्तो ही अभद्राणी, हृदय में जो अभद्र है उसको विधुनोती विशेष रूप से धोता है। भगवान का जो गुण है नाम लीला ये पवित्र करने वाला है।
और दूसरा बात ये बता है, लेकिन भगवान का भक्तों का चरित्र को सुनने से भक्ति को वर्धन करने वाला है। भगवान के बारे में तो, क्योंकि भगवान का सब कुछ पवित्र है, भगवान के बारे में सुनने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है, लेकिन भगवान का भक्तों के बारे में सुनने से या सुनाने से भक्ति का वर्धन होता है। और श्रवण दो प्रकार के हैं, इसलिए एक तो भगवान के बारे में सुनना और भगवान के संबंधित वस्तुओं के बारे में। शिवजी यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के संबंधित वस्तुओं को पूजा करना वो भगवान से भी श्रेष्ठ है, जैसा कि भगवान का नाम भगवान से भी श्रेष्ठ है। तो पृथु महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान का शक्यावतार है, इनके बारे में ये सुनने से इसके आगे इस अध्याय के अंत में करीबन 9 श्लोक में वर्णन किया है कि किस तरह 13 कोई इसके पहले कुछ ब्रह्मचारी यहाँ बता रहे थे, हालांकि ये मेरे ख्याल से 3-4 महीने से चल रहा है, इससे भी अधिक समय से पृथु महाराज का गुणों के बारे में वर्णन चल रहे भागवतों में। तो अंत में 9 श्लोक में मेरे ख्याल से भागवत में किसी भी अध्याय का इतना 9-9 श्लोकों में कभी सुखदेव गोस्वामी या सूत गोस्वामी ने वर्णन नहीं किया है, लेकिन पृथु महाराज का जो चरित्र है इसको पढ़ने से या सुनाने से या सुनने से क्या इसका प्रभाव होता है, क्या इसका महत्व है, कम से कम 9 श्लोकों में वर्णन किए हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं तो भगवान से पूर्ण रीति से सरेंडर होते हैं, और उनका चरित्र को पढ़ने से या सुनने से हृदय में भगवान के प्रति और भी भक्ति दृढ़ हो जाता है। एक छोटा सा कहानी है, ये बहुत ही आनंद देने वाला कहानी है। साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय में श्रीमान रामानुजाचार्य, जो श्री संप्रदाय के परम गुरु है, उनके एक शिष्य थे श्री अनंत आचार्य, शायद आपने के बारे में सुने होंगे। अनंत आचार्य रामानुजाचार्य के बहुत ही प्रिय भक्त थे। एक बार रामानुजाचार्य सभी भक्तों के साथ वर्ताव कर रहे थे, तब रामानुजाचार्य को लगा उस टाइम जो अभी बालाजी मंदिर है, उस बालाजी मंदिर जो चढ़ के ऊपर है वहाँ कोई जाते नहीं थे, बहुत सारे ट्रीज पेड़ वगैरह वहाँ थे और हिंसक पशु भी थे, इसलिए कोई जाते नहीं थे पहले। इसलिए रामानुजाचार्य को दुख होता था कि भगवान का सेवा नहीं हो रहा, कोई भक्त वहाँ जाना चाहिए और वहाँ सभी साफ सफाई करना चाहिए, लेकिन वहाँ कौन जाएंगे, अपने भक्तों को किसको भेजना है, तो ये सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा बैठे भक्तों में उन्होंने पूछताछ किया, क्या इसमें कोई इच्छा करते हैं कि भगवान का सेवा वहां जाकर करे। तो अनंत आचार्य रामानुजाचार्य के बहुत ही प्रिय भक्त थे, और उन्होंने तुरंत रामानुजाचार्य का मन का भावना को समझ लिया और तुरंत उन्होंने बोला, प्रभु मैं जाऊंगा, गुरुवर मैं वहां जाके सेवा करूंगा। तो रामानुजाचार्य बहुत खुशी हुई उनको, लेकिन हालांकि वो जानते थे उनके जो अनंत आचार्य जी का पत्नी गर्भिणी थी पद्मावती, तो उन्होंने पूछा, आपके पत्नी का स्थिति अभी ठीक नहीं, वहाँ जाना नहीं, प्रभु अभी हम जाके वहाँ सेवा करते हैं। तो बहुत उन्होंने विनंती किया कि मैं जाना चाहता हूँ, आपका मन का भावना मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो रामानुजाचार्य खुश होकर सब इंतजाम कर दिए और वो दोनों पति और पत्नी बालाजी के मंदिर के यहाँ गए। वहाँ जाके छोटा अपना ये घर बना के वहाँ रहते थे। और एक दिन अनंत आचार्य को लगा कि यहाँ भगवान का सेवा के लिए फूल नहीं है, पुष्प नहीं है, तो पुष्प का एक गार्डन बनाना चाहिए, एक सुंदर उद्यान बनाना चाहिए। लेकिन उसके लिए पानी नहीं था, तो पानी के लिए उधर कुआं खोदना पड़ता था, कुआं खोदना चाहिए। इसलिए वो सोचे कि हम छोटा सा एक कुआं इधर बनाएंगे। तो पद्मावती अपने पत्नी को बताया कि हम धीरे धीरे इसको खोद के पानी निकालेंगे यहाँ से। तो दिन भर भगवान का सेवा के लिए सुबह निकलते थे, उसको कुआं दोनों मिलकर अनंत आचार्य जी उसको खोद कर मिट्टी भरकर कटोरी में देते थे और माता उसको मिट्टी को लेकर दूर जाके फेंक के आती थी। और इसमें भगवान का नाम लेते वो तल्लीन रहते थे। धूप में या ठंडी में उनको कोई चिंता नहीं था, क्योंकि इतना मग्न होकर भगवान का सेवा करते थे। एक्चुअली इन्होंने भगवान का सेवा से अधिक अपने गुरु का संतुष्टि के लिए करते थे। ये मेरे गुरुजी ने बताया है, तो गुरु का सेवा है इसलिए वो करते थे। तो भगवान ने देखा बालाजी इतने कड़ी धूप में ये दोनों इतना मेहनत कर रहे हैं, मुझे इनको कुछ तो सहायता करना चाहिए। कि भगवान बहुत दयालु है, जो कोई अपने भगवान का भक्तों का सेवा करता है तो उसके प्रति भगवान को बहुत प्रेम आता है। तो उस टाइम उस समय भगवान स्वयं छोटा बालक बनकर अनंत आचार्य का जो पत्नी थी पद्मावती उनको मदद करने के लिए छोटा बालक बनकर आए। सो दूर से खड़े रहे, पद्मावती जो टोकरी लेकर मिट्टी को वहां डाल रही थी, तो भगवान को देखे, इतना सुंदर रूप था भगवान का। और वो भगवान ने वो माता का पीछे पीछे चलने लगे, मैया मुझे भी थोड़ा काम दे दो ना। उसको माता को बोल रहे, मैया आप जो कर रहे हैं ना ये टोकरी मेरे सर के ऊपर रखो, मैं जाके वहां फेंक कराऊंगा। तो माता बहुत प्रेम पूर्वक बोली, बेटा तुम छोटे हो, तुम यहां बैठो, मैं तुमको कुछ खाने के लिए दे दूंगी, तुम इधर बैठो। तो भगवान, नहीं नहीं मुझे इसमें से खेलने का है, तो आप इस टोकरी मेरे सर के ऊपर रखो। तो बहुत पीछे पीछे पढ़ने लगे, तो उसको माता को बहुत एक हृदय में आनंद हो रहा था, ये बच्चा कितना अच्छा है। तो ठीक है, उसको मिट्टी को आधा निकल के छोटा मिट्टी भगवान का सर के ऊपर रखी पद्मावती जी ने। तो भगवान एकदम गाते गाते सर के ऊपर लेके वो मिट्टी को वहां डाल रहे और वापस आ रहे, और माता वहीं खड़ी है। छोटा बच्चे थे और भगवान तुरंत जाकर आते थे और माता जाके कटोरे को वापस अनंत आचार्य को देते थे। अनंत आचार्य ने सोचा, तुम इतना जल्दी क्यों आ रहे हो, तुमको तो वहां फेंकने का था, इतना जल्दी कैसे आ रहे हो। तो माता ने बताया कि वहां एक बेटा है तो मुझे वो सहायता कर रहे हैं। तो अनंत आचार्य को अच्छा नहीं लगा, ये सेवा हमारा है, हमारा गुरु के लिए कर रहे, छोटा बच्चा को मना करो, उसको मत दे दो। तो बोले ठीक है। फिर ऊपर जाके माता ने मिट्टी लेकर गई, तो भगवान बोले, माता मुझे दे दो। नहीं नहीं वो प्रभु जी गुस्सा कर रहे, आप इधर बैठो। तो भगवान बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैं धीरे धीरे आऊंगा माता, आप उनको मत बताओ। तो भगवान ने फिर से लेने के लिए, वो माता एक बार भगवान की तरफ देखती है और एक बार अनंत आचार्य की तरफ देखती है, फिर भी प्रेम के वशात उसके भगवान के सर के ऊपर मिट्टी रख रहे हैं और भगवान फेंक रहे हैं। तो अनंत आचार्य को डाउट आया, ये फिर भी झूठ बोल रहे हैं, ये बच्चा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने वो काम छोड़कर ऊपर आए, उनके हाथों में वो कुराड़ी था, उसको क्या बोलते हैं आप हिंदी में, पौड़ा, पौड़ा वो एक्स जैसा होता है, तो उसको लेकर हाथ में लेकर आए और देखा। पहले बच्चा को बोले, अरे बच्चा जाओ इधर, तुम बैठो, तुम काम मत करो, ये हमारा सेवा है। तो भगवान तो ऐसा देख के घबरा के थोड़ा बैठे और नीचे जाने के बाद फिर वापस आए, माता को बोल रहे, माता दे दो दे दो। तो अनंताचार्य ये देख के उनको गुस्सा आया, फिर से ऊपर आए और उसको थोड़ा चैस्टाइज करने के लिए, घबराने के लिए अपने हाथों का जो पावड़ा था उसको ऐसा करने के लिए, उस घबराने के लिए, मारने का नहीं था, जस्ट घबराने के लिए ऐसा किया। लेकिन भगवान का इच्छा था वो पावड़ा उनके हाथ से निकलकर भगवान का बच्चा का सर के ऊपर लग गया, और जैसा ही वो लग गया तो खून बहने लगा और भगवान भागने लगे। और ये देखे, अरे बच्चा तुम किधर भाग रहे हो, तो रुको रुको, अनंताचार्य उसके पीछे भाग रहे। तो भगवान ने उस जो मंदिर है, अभी आप बालाजी का मंदिर जो देखे हैं, उस मंदिर में भगवान घुस गए। अनंताचार्य इधर उधर ढूंढ रहे, वो बच्चा कहीं नहीं मिल रहे। तो भगवान का मूर्ति के तरफ देखे, बहुत सुंदर भगवान का विग्रह है, विग्रह के तरफ अनंताचार्य ने देखा तो भगवान का सर के ऊपर से खून बह रहे। तो अनंत आचार्य को इतना दुख हुआ, वो उसको पौड़ा को नीचे फेंक कर रोने लगे, हे भगवान मैं कितना मूर्ख हूं, मैं समझ नहीं पाया, तुम स्वयं मेरे पत्नी का मदद करने के लिए आए हैं, कृपया मुझे माफ करो। तो ऐसा बोल के वहां से निकल गए और अपनी सेवा करने लगे। तो उनके मन में यह रहा कि मैं भगवान को पहचान नहीं पाया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उनके सपने में वही बालाजी आ गए, अनंत आचार्य के सपने में आके अनंत आचार्य को भगवान गुस्सा करने लगे, तुम क्या करते हो इधर, यहां से निकल जाओ, तुम्हारा सेवा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा उनको डांटने लगे भगवान। बालाजी बोलते तुम यहां से निकल जाओ। अनंत आचार्य देखते, अरे सुबह उठने के बाद, अरे भगवान मुझे गुस्सा कर रहे, तो ठीक है, अपना गुरु का काम है, अपने गुरु का सेवा है, इसलिए वो ऐसा सेवा करने लगे। फिर से दूसरे दिन भगवान सपने में आए, अनंत आचार्य तुम अभी तक यहां से नहीं गए हो, यहां से निकल जाओ। तो ऐसा दूसरा बार भगवान गुस्से करने लगे। तो फिर से तीसरा दिन भगवान उनके सपने में आके अनंत आचार्य को डांटने लगे। तो अनंत आचार्य को सहन नहीं हुआ, तो मैं तो मेरा भगवान का, मेरा गुरु का सेवा कर रहा हूं और भगवान मुझे क्यों डांट रहे हैं, तो अगर कल भगवान सपने में आते हैं तो मैं भगवान को सुनाऊंगा, अनंत आचार्य ऐसा सोचते हैं। और अगले दिन फिर से भगवान सपने में आए तो भगवान बोलने लगे, बालाजी तुम अभी तक गए नहीं हो। तो अनंत आचार्य हाथ जोड़कर भगवान को बोलने लगे, हे भगवान, हे सृष्टि का मालिक, मैं यहां आया हूं मेरे गुरु का सेवा करने के लिए और आप मुझे यहां से निकलने के लिए बोल रहे, हालांकि मेरा ये जगह नहीं है, मैं तो एक टेनेंट हूं इधर, कुछ दिन के लिए मैं एक टेनेंट हूं, लेकिन भगवान ये आपका भी जगह नहीं है, आप भी इधर टेनेंट है, आपका धाम गोलोक धाम है, आप माता प्रेमपुर माता को छोड़कर आपने यहां आया है, आप भी एक टेनेंट है, एक टेनेंट दूसरे टेनेंट को जाने के लिए कहते नहीं है। सब भगवान को डांटने लगे। तो अनंत आचार्य को देख के लक्ष्मी माता का याद करके दिए, अनंत आचार्य ने उनको लक्ष्मी माता का याद कर, आपने लक्ष्मी माता लक्ष्मी के साथ झगड़ा करके यहां आए हैं, तो आप भी मेरे जैसा एक टेनेंट है। तो ये सोचकर भगवान हंसने लगे, ठीक है तुम यही सेवा करते रहो। भगवान इतना दयालु है कि जो कोई भक्त का सेवा करता है उसके प्रति अत्यंत उनको दया है, और भक्त से भी ज्यादा वो भक्तों को सेवा करने वाले को भगवान प्रेम करते हैं। इसी संदर्भ में और एक शायद आप सब जानते हैं, पंडरपुर एक पवित्र धाम है, पूरा इस विश्व में पंडरपुर एक ही जगह है जहां आप स्वयं भगवान का चरणों का स्पर्श करते हैं, कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी मंदिर में भगवान का चरणों का स्पर्श होता नहीं है, लेकिन पंडरपुर एक ही धाम है, वहां एक्चुअली भगवान का चरणों के ऊपर आप माथे रख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं। तो इसी भगवान एक बार पंडरपुर में आए हैं। पंडरपुर में एक पुंडरीक नाम के बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे और उनके माता पिता भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और पुंडरीक माता पिता का बहुत सेवा करते थे। वो वृद्धावस्था में थे तो उनको बहुत सेवा करते थे। तो भगवान जानते थे, एक बार माता रुक्मिणी के साथ भगवान गरुड़ के ऊपर आसन होकर पंडरपुर के ऊपर से चल रहे थे, तब उनको याद आ गया कि मेरे यहाँ एक भक्त है, इनको मिलना चाहिए। तो स्वयं भगवान नीचे उतर कर आए और पुंडरीक अपने माता पिता का सेवा कर रहे थे और भगवान ने वहाँ चिल्ला रहे दरवाजे के ऊपर खड़े होकर, भगवान पुंडरीक ए लो मैं आया हूँ। तो जैसा भगवान को देखा पुंडरीक ने, हे भगवान वहीं नमस्कार करके, कृपया आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, मैं मेरा माता पिता का सेवा कर रहा हूँ, आप थोड़ा रुकिए। तो भगवान को खड़े रहने के लिए एक वहाँ ईंट था, पुंडरीक ने एक हाथों से ईंट को फेंक दिया, हे भगवान आप ईंट के ऊपर खड़े रहे, उधर कीचड़ है तो ईंट के ऊपर आप खड़े रहे। तो भगवान तो इतना दयालु है, अपने दोनों हाथों को कमरे के ऊपर रख कर भगवान उस ईंट के ऊपर खड़े रहे। इसलिए भगवान का नाम है विठल, विठल मतलब ईंट के ऊपर खड़े हैं भगवान। और इसी भगवान, ये जो पुंडरीक है, श्रीमद् भागवतम में हम मुचकुंद, राजा मुचकुंद के बारे में चरित्र सुने हैं। ये पुंडरीक और कोई नहीं था, ये वही मुचकुंद थे। अपने पिछले जन्म में हिज होलीनेस परम पूज्य महाराज एक बुक लिखे हैं, भू वैकुंठ, ये भू वैकुंठ बुक में बहुत ही मराठी में इसको बुक लिखे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से सारे इसको वर्णन किए हैं। तो राजा मुचकुंद आप जानते हैं एक बहुत बड़ा योद्धा थे, इस पृथ्वी का पूरा राज्य कर पृथ्वी में राज करते थे। एक बार देवताओं को असुरों के साथ संघर्ष करना पड़ा, उस समय इंद्र या देवता सारे देवता इस राजा मुचकुंद को, क्योंकि बहुत पराक्रमी थे, इनको उन्होंने विनंती किया आप हमारा मदद करो। तो राजा मुचकुंद ने इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग में जाकर देवताओं के प्रति असुरों को संहार करने के लिए उनको मदद किया। बहुत घमासान युद्ध हुआ, इतना जोर से लड़ाई हुआ कि सारे असुरों को उन्होंने इसको, हालांकि कई वर्ष लगा, और असुरों को संहार करके सभी देवी देवताओं को नमस्कार करके बोले आपका मैं सेवा कर दिया हूँ, मैं अभी भूतल पे जाऊँगा और थोड़ा रेस्ट करूँगा, विश्रांति करूँगा। तो इंद्र ने पूछा आपने इतना हमारा मदद किया, आप कुछ तो वर मांगिए। तो राजा मुचकुंद ने तो बोला नहीं मुझे कुछ नहीं मांगना, अभी तो मैं बस यही मांगता हूँ, मैं भूतल पे जाकर कहीं एक स्थान में विश्रांति लूँगा, आप मुझे ऐसा वरदान दे दो कोई मेरा नींद को डिस्टर्ब नहीं करे, अगर कोई मेरा नींद को व्यतीत करता है, डिस्टर्ब करता है, उसको मुझे ऐसा शक्ति दीजिए मेरा आँखों से उसको मैं जला सकूँ, जला के मार सकूँ। ये तो भगवान का एक प्लान था। तो इंद्र ने बोला ततस्तु, तो उनको वो शक्ति मिल गया देवताओं से, और वही राजा मुचकुंद नीचे आकर यहीं द्वारका में, द्वारका के पास एक गुफा है, उस द्वारका के गुफा में वो आकर सो गए थे। और उसी समय कालेवन ने भगवान के पीछे पीछे भागते हुए भगवान के साथ युद्ध कर रहा था, और भगवान रण छोड़कर यहाँ मुचकुंद का गुफा में आ गए थे, इसलिए भगवान का एक नाम है रणछोड़ राय। तो बहुत सुंदर मंदिर है गुजरात में, ये बरुच के नज़दीक है, बरुच गांव के नज़दीक है। भगवान तो रण को छोड़ के गए फिर भी रणछोड़ बोल के प्रसिद्ध हुए। अगर कोई व्यक्ति रण को छोड़ के जाता है तो उसको कायर बोला जाता है। तो मुचकुंद वहां सोए थे और भगवान ने अंदर जाकर उसी गुफा में बाजू में जग गए। तो कालेवन भगवान को गालियां देते देते भगवान के पीछे आकर उसी गुफा में घुस गए और वो देखा कि यहां कोई तो सोया है, उसको लगा कि यही भगवान सोए हैं, तो भगवान को गाली देने लगा, तुम कायर हो, रण को छोड़कर यहां आए हो। तो अपने पैरों से उस व्यक्ति को उन्होंने लात मार दिया। हाँ, तो मुचकुंद का तो वरदान था, तो मुचकुंद ने उठकर अपने आंखों से उसको देखा तो कालेवन जलकर भस्म हो गया। तो भगवान देखिए, एक पत्थर में दो पक्षियों को मारने का था उनको, एक तो मुचकुंद को कृपा देने का था और कालेवन को इनसे मारना था। तो मुचकुंद तो इतने बड़े भक्त नहीं थे, वो तो सेवा करते थे वैष्णवों का, लेकिन एक बार ब्रह्मा जी से सुने थे ये भगवान के बारे में, तो भगवान का छाया से, भगवान का सानिध्य से उनको अंदर एक प्रसन्नता आने लगा मुचकुंद को। तो भगवान का जो पहना हुआ जो वस्त्र है उसे जो प्रकाश निकल रहा था, वो प्रकाश से उसको प्रभावित होकर वो समझ गई यही भगवान है। तो इतना सुंदर प्रार्थना किया उन्होंने, तो उन्होंने यही मांगा कि अगर मुझे देना है तो मुझे अच्छा भक्त बनाइए। और यही मुचकुंद अगले जन्म में ये पुंडलीक महाराष्ट्र में होके आए थे और भगवान ने कृपा किया। तो भगवान ने भक्तों के भक्त जो है उनके ऊपर विशेष कृपा प्रदान करते हैं। एक भागवतम में इस रहस्य के संदर्भ में बहुत ही सुंदर भगवान ने भक्तों का गुणगान गाए हैं। जब दुर्वास मुनि अम्बरीश महाराज को, आप सब इस कहानी को जानते हैं, दुर्वासा मुनि अम्बरीश को, राजा अम्बरीश को मारने के लिए अपने केश से उन्होंने एक असुर को प्रकट किया और वो असुर को बोला तुम इसको मारो। तो जब असुर उसको मारने, राजा को मारने के लिए गए, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए गए, तो भगवान का सुदर्शन चक्र उसी असुर को मारकर दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लगे। तब दुर्वासा मुनि घबरा कर वहाँ से भागने लगे और सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते कि मुझे बचाओ, मेरे पीछे सुदर्शन चक्र पीछे है मुझे मारने के लिए। तो ब्रह्मा जी तो बोला मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो भगवान का शस्त्र है। तो इसी तरह उन्होंने शिव जी, ब्रह्मा जी, इसी सब धाम को उन्होंने प्रदक्षिण किया, लेकिन कोई उनको मदद नहीं कर पाया। तो ब्रह्मा जी बोलते आप स्वयं भगवान के पास चले जाओ और उन्हीं से प्रार्थना करो। तो दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के पास गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने बहुत ही सुंदर चार श्लोकों में भक्तों का वर्णन किए हैं। तो ये 9.4.63-69 भगवान बोलते हैं, मैं इसको पहले इसका अर्थ पढ़ूंगा। भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूं, मैं तनिक भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे भक्त भक्ति इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। मुझे मेरे भक्त ही नहीं मेरे भक्तों के भी भक्त अत्यंत प्रिय है। और हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्य का भोग भी नहीं करना चाहता हूँ, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। आगे भगवान बताते हैं, चूंकि भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति के इच्छा से रहित होकर घर, पत्नियों, बच्चे, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को किस तरह छोड़ सकता हूँ। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। अहम भक्त पराधीनो हिया स्वतंत्र इव द्विजा, अहम भक्त पराधीनो हिया स्वतंत्र इव द्विजा, साधु भीर भक्त हृदयो भक्तैर्भक्त न प्रियां, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियां, अहं भक्त पराधीनो हिया स्वतंत्र इव द्विजां, नाहं आत्मानं आशासे मद्भक्तैर्साधुभिर्विनां, नाहं आत्मानं आशासे मद्भक्तैर्साधुभिर्विनां। कृपया गाइए। नाहं आत्मानं आशासे मद्भक्तै साधुभिर्विनां, श्रेयं चात्यन्तिकि ब्रह्मन् येषां गतिरहं परां, श्रेयं चात्यन्तिकि ब्रह्मन् येषां गतिरहं परां, ये दारागार पुत्राप्ता प्राणान्नामित्तमिमं परम्, ये दारागार पुत्राप्ता प्राणान्नामित्तमिमं परम्, हित्वा मां शरणं यातः कतं त्यां त्यक्तुम् सहे, मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शनां, वसे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रीय सपतिं यता, सत्स्त्रीयं सपतिं यता, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामो 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 हरे हरे। कृपया गाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे,
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं भगवान ने भक्त के बारे में प्रार्थना किए हैं। सो श्रीमद् भागवतम में प्रत्येक पन्ने पन्ने में भगवान का गुणों का और भक्तों का चरित्र भरा भरा हुआ है। प्रत्येक श्लोक में बहुत ही आनंददायक है और इसमें और भी कई प्रार्थनाएं में कैसे भक्त भगवान के और वैष्णव का गुणगान किया है। एक प्रार्थना में महाराज चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु आप जानते हैं कि भगवान के महान भक्त और उसी जन्म में उन्होंने स्वयं भगवान का दर्शन किए थे और इस प्रार्थना में महाराज चित्रकेतु बताते हैं। चित्रकेतु महाराज ने कहा, हे अजय भगवान, यद्यपि कोई आपको जीत नहीं सकता, फिर भी आप उन भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं जिन्होंने अपने मन एवं इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया है। वे आपको अपने नियंत्रण में इसलिए रख पाते हैं क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से ऐसे भक्तों के प्रति दयालु रहते हैं जो आपसे कुछ भी भौतिक लाभ नहीं चाहते। इतना ही नहीं, आप स्वयं को भी उनके हवाले कर देते हैं और इसलिए आप भी पूरी तरह अपने भक्तों को नियंत्रण करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। देखिए, भगवान ने माता यशोदा का छड़ी से घबरा कर भागते हैं तो इस पृथ्वी का मालिक और सभी जो भीति जो है वो भी उनका अधीन में है, फिर भी भगवान का ये अद्भुत लीला है, माता का छड़ी को घबरा कर भगवान भागते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मेरा कोई स्वतंत्र नहीं हूँ, पूरा भक्त का हवाले में हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो आज का इस श्लोक में भगवान का चरित्र के बारे में प्रतु महाराज का चरित्र सुनने से और भक्तों में इनको गुणगान करने से वो व्यक्ति उसी परम धाम को प्राप्त कर लेता है। शिवजी भी बता रहे, भगवान से भी नहीं, भगवान के भक्तों का और भगवान से संबंधित, भगवान विष्णु का संबंधित जो भी प्रिय वस्तु है उसका भी गुणगान करने से भक्त के ऊपर भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं। बहुत ही सुंदर आज का श्लोक था। आप सभी का कृपा से मैं आज कुछ इसको पढ़ सका हूँ और अगर कोई गलती है तो माफ़ करिए। तो कुछ प्रश्न है तो उसमें, हाँ जी, यह है प्रभु जी छठवां स्कंद 16 अध्याय और 34 श्लोक 34 6.16.34। हरे कृष्णा। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की।